Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ibn al-musaleen wa ala alihi wa sahbihi wa mistana bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa aminu shalihan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Ameen ya Rabbil Alameen. Tuma amma ba'd, fa'a'udhu billahi min ash-shaytan wajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna 'inda al-mawti bila ilaha illa Allah. Eh hamare Allah, hame hamari maut par kalma la ilaha illa Allah par sabit kar do. Ameen ya Rabbal Alameen. Suratul Kahf aur Suratul Kahf se mutalliq kuch sabak, kuch lessons jo hame apni foran zindagi mein fayda de sakta hai. Suratul Kahf aisi surat hai ki jisko aapko aur mujhe har jumme ke din padhne ka kaha gaya hai, aur aapko ye baat malum hogi ki agar aap puri surat padhti hain to alhamdulillah ahadees se ye baat bhi sabit hai ki aap iski agar puri surat na padh sake to shuru ki 10 ayat और बाद रिवायात से पता चलता है आखिर की 10 आयात कम से कम पढ़ने की कोशिश जरूर करें, ताकि ये कि आपके लिए एक सुन्नत का जो है पूरे करने का सवाब वो भी मिल जाए, और साथ साथ जो सूरत ये आपको और मुझे सिखाती है उसका भी कुछ फ़ायदा, कुछ बेनिफिट आपको और मुझे मिल जाए. सूरतुल कहफ़ के ऊपर एक घंटे के अंदर कोई ऐसी बात करना जो बहुत प्रोफाउंड भी हो और सूरत से मुतालिक भी हो, तो उसमें एक ही तरीका मुझे नज़र आ रहा था कि जिसमें इंशाल्लाह एक सिटिंग में हम कोई फ़ायदेमंद बात लेकर उठ सकता है. आपको सूरतुल कहफ़ का बैकग्राउंड शायद थोड़ा बहुत मालूम होगा. सूरतुल कहफ़ उन सूरतों में से है जिसको अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही किया गया तो आपसे यहूदियों ने बात सवाल पूछे थे, उन सवालों के जवाब के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये वही आई थी. जैसे बासूरतों के बारे में आप जानती हैं कि बासूरतों के पीछे बहुत बड़ा वाकया, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट, कोई कहानी मौजूद होती है, बहुत ही इलैबोरेटेड कहानी. जैसे सूरह तौबा के पीछे बहुत इलैबोरेटेड कहानी मौजूद है. सूरह फतह आपको उस वक्त अच्छी तरह समझ आएगी, बिना फतह ना फतह लगा होगी ना. पहली आयत भी इस तरह शुरू होती है, जब तक आपको वो सारा वाकया नहीं मालूम होगा कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर उमरा करने की नीयत से निकले थे, कौन से हालात थे, किन हालात में सुलह हुदैबिया हुआ और उसके बाद सूरह फतह नाजिल हुई, जब तक आपको और मुझे वो सारा बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा हम आयात की गहराई को नहीं समझ सकेंगे. सूरतुल कहफ के पीछे भी कहानी है, लेकिन अब या तो हम कहानी पर बात कर सकते हैं या हम सूरतुल कहफ की आयात पर बात कर सकते हैं. तो बेहतर यह है कि सूरतुल कहफ के अंदर चार बड़े वाक्यात बयान किए गए हैं, और ये जो चार बड़े वाक्यात हैं ये चारों एक दूसरे से कई एंगल से कनेक्टेड हैं. बज़ाहिर मालूम हो रहा है कि बिल्कुल अलग अलग हैं, और अगर आप तारीख में इनका मुकाम देखें, इन चारों वाक्यात का पूरी हिस्ट्री के अंदर जो ह्यूमैनिटी की है, तो ये आपको पूरा हिस्ट्री में स्कैटर्ड नज़र आता है. साल के तौर पर मैं बहुत डिटेल में वाक्यात आपके सामने बयान नहीं कर सकती. आपको जो चार वाक्यात सूरतुल कहफ के अंदर मिलते हैं, उनमें सबसे पहला वाक्या कौन सा मिलता है? पहला सबसे पहली कहानी किसकी है? असहाबे कहफ की कहानी है अभी. और असहाबे कहफ के बारे में आप जानते हैं कि इनका सिर्फ मुसलमानों के पास कुरान के जरिए इल्म नहीं आया. असहाबे कहफ पीपल ऑफ द केव ये वो लोग थे जो कि रोमन हिस्ट्री से चले आ रहे थे. रोमन हिस्ट्री के अंदर, हिब्रू ट्रेडिशन के अंदर, ज्यूइश ट्रेडिशन के अंदर इनकी कहानी मिलती थी. कुरान ने आके उस कहानी को और फाइन ट्यूनिंग कर दी कि जो उनके पास कहानी थी वो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ थी. कुरान ने आकर उसकी स्पेसिफिक डिटेल जो थी वो दे दी और बात को और एलैबोरेट कर दिया. ये असहाबे कहफ कौन थे? असल में एक बादशाह था मुख्तसर, और वो जो बादशाह था वो रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर के साथ जो था कनेक्टेड था. एक मौके के ऊपर उस बादशाह ने अपने उस पूरे एम्परर ने अपने उस किंगडम के अंदर एक बहुत बड़ा बुद्ध बनवाया था, और उसने ये कहा था अपने पूरी किंगडम से कि मेरे समेत ये पूरी किंगडम इस ग्रीक आइडल के सामने जो है वो बाव डाउन करेगी, सजदा करेगी। तो ये वो चंद लोग थे, ये वो चंद नौजवान थे जिन्होंने उस बुद्ध के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन चंद नौजवानों के लिए आता ये है कि ये आम लोग नहीं थे, ये समझ लें कि पॉलिटिशियंस के बच्चे थे, जो हाई पोजीशन के पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चे थे। और होता ये था, ये वो दौर था जो कि आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर मिलता है, क्रिश्चियन उस वक्त का ये मजहब जो था वो प्रोमिनेंट था, और ये अपने दौर के क्रिश्चियन थे जिनमें शिव पेनिट्रेट हो चुका था ग्रीक माइथोलॉजी की वजह से। जब इन चंद नौजवानों ने ये सोचा कि ये जो बुद्ध है ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, लेकिन क्रिश्चियनिटी की जो एक्चुअल तालीमात थी वो खो चुके थे, इनको प्रॉपरली डिवाइन रेवलेशन का इल्म नहीं था, बस ये इनके दिल में फितरत में ये चीज थी कि ये चीज हमारा मजहब नहीं हो सकता, ये बुद्ध हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो जब बादशाह ने उस वक्त ये ऐलान किया कि सबने इस बुद्ध के सामने आकर अपनी एलिजेंस देनी है, इन चंद लोगों ने सोचा कि हम ये काम नहीं कर सकते, और ये चंद नौजवान थे, यंग एज के नौजवान थे। जिस वक्त ये जो दौर था इसमें जो रिलीजन था उसका ताल्लुक, या जो बादशाह था उसका एक बुद्ध के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रखना, इसका ताल्लुक सिर्फ रिलीजन के साथ नहीं था बल्कि पॉलिटिक्स के साथ भी था। इसलिए आपको अगर किंगडम्स का थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो जितनी भी किंगडम्स होती हैं इसमें बादशाह की बात का इनकार जो है वो असल में ट्रीजन समझा जाता है, गद्दारी समझा जाता है। तो जब इन चंद नौजवानों ने इनकार कर दिया तो इसकी सजा जो थी वो डेथ पेनल्टी थी, कि नौजवानों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन क्योंकि हाई पोजीशन एक तबके के लोग थे, एलीट क्लास से इनका ताल्लुक था, तो इनको इतनी कंसेशन दी गई कि ठीक है हम आपको एक चांस और दे रहे हैं ताकि आप अपनी इस्लाह कर लें, और जब आपको बुलाया जाए दोबारा तो आप आकर इस बुद्ध के सामने अपनी वफादारी का इजहार करें। इसलिए भी असल में बुद्ध के सामने वफादारी का इजहार बादशाह से एलिजेंस का इजहार होगा। और होता यह है कि ये छोटे से लोग जो हमेशा से माशरे के अंदर अगेंस्ट द क्राउड, अगेंस्ट द फ्लो जाते हैं, ये उस वक्त की पावर मैच के लिए खतरा होते हैं। इसलिए कि अगर आज जान ने इनकार किया है तो चांसेस यही है कि मुस्तकबिल में इनके पीछे 10-15 और चल पड़ेंगे। तो बादशाह को इनसे खौफ था, बादशाह ने इसीलिए इनको एक कंसेशन दिया ड्यू टू बीइंग इन द हाई क्लास इन द एलीट क्लास, कि ठीक है हम फौरन आप पर डेथ पेनल्टी नहीं लगाते, आप टाइम ले लें, लेकिन आपको उस टाइम पीरियड के बाद आकर वही करना होगा जो बाकी कौन ने किया है। ये जो इनको कंसेशन पीरियड मिला उस ड्यूरेशन में इन चंद नौजवानों ने ये डिसाइड किया कि ये इलाका छोड़कर चले जाएंगे। उस वक्त ये इलाका छोड़कर गए और फिर इन्होंने जाकर जिस कार के अंदर पनाह ली और फिर ये अल्लाह ताला के हुक्म से, क्योंकि ये अल्लाह की खातिर हिजरत करके निकले थे, इनको नहीं मालूम था कि असल में अल्लाह की इबादत की कैसे जाती है, इनको अल्लाह की प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं थी, इसलिए इनके टाइम पीरियड में आसपास कोई नबी नहीं था, तो इनके पास वो तालीमात प्रॉपरली पहुंची नहीं थी। लेकिन वो दिल सलामत था, दिल में अल्लाह था, इसलिए हर दिल में अल्लाह होता है। याद रखिए बाय नेचर बाय फितर आप हम सब एक ही जैसे हैं, हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं, हमारे एक दूसरे के साथ आदात का थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अगर आप फितरत की बात करें तो फितरत, या यकीन रखें फितरत पाकिस्तान में रहने वाले की हो या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले की हो या इंडिया में रहने वाले की हो या वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले की हो या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रहने वालों की हो, बाय फितरत हम सब एक जैसे हैं, हम सब की फितरत एक जैसी है, इसलिए अल्लाह ने हमें एक ही तरह की फितरत से बनाया है। अगर हम एक फितरत के ना होते तो कुरान इंसानियत के लिए नहीं आता। अगर मुसलमानों की फितरत अलग होती जिसको आप नेचर भी कह सकते हैं, अगर मुसलमानों की फितरत अलग होती, हिंदुओं की फितरत अलग होती, बनी इसराइलियों की फितरत अलग होती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया है उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि हुदल लिन्नास, ये इंसानियत के लिए हिदायत है। इंसानियत के लिए हिदायत इसका मतलब है कि हर इंसान को एक ही तरह अपील कर सकता है। हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि हमारे हालात, हमारा माहौल, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे माँ बाप के साथ हमारी ग्रूमिंग, हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ हमारा उठना बैठना रहन सहन ये हमें आदतन मुख्तलिफ कर देता है, और वो जो अल्लाह की पहचान है, जो फितरत है जिसको कुरान अपील करता है, वो सबके अंदर है, वो कहीं छुप जाती है, वो कहीं दब जाती है। आप देखिए कुरान में मिसाल आती है ना पत्थरों की, सूरह बकरा में, कि बास पत्थर ऐसे हैं जो बर्स्ट ऊपर एकदम से फट जाते हैं, बास पत्थर ऐसे हैं जिसमें क्रैक आ जाता है, और बास पत्थर ऐसे हैं जो गिर जाते हैं। एक्चुअली वो पत्थरों का पैराबल तो है, लेकिन वो तो दिलों का पैराबल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहाँ पर इंसान के दिल की मुख्तलिफ कैफियात बयान की है। तो ये वो लोग थे, ये जो चंद नौजवान थे जिनको आप असहाबे कहफ के नाम से जानते हैं, ये वो लोग थे जिनकी फितरत सलामत थी। इसलिए माहौल प्रोवर्टेड होने के बावजूद इनके अंदर से फितरत ने कहा कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो सकता। क्या ठीक है और क्या गलत है आपको अंदर से आपकी फितरत बताती है। हमें भी जब बाजू का कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि हम ये काम करें या ना करें, करें या ना करें, बाजू का आप एक कश्मकश की कैफियत में होती हैं, हालात की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, औलाद के प्रेशर की वजह से आप चीज़ों को डिसाइड नहीं कर पा रही होती। लेकिन ये जो आपकी कश्मकश होती है इसमें आपके अंदर से एक आवाज़ डोमिनेंटली आ रही होती है जो आपको बताती है कि क्या आप ये काम करें या ना करें। वो अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है वो आपकी फितरत होती है। हमारा मसला ये है, हम फितरत का गला घूम कर दबा देते हैं और उसको हम इतना वीक कर देते हैं कि वो फिर स्टैंड लेने के काबिल नहीं रहती। ये वो लोग थे जिनकी फितरत सलामत थी, इसलिए इन्होंने अल्लाह पर, इलाह पर भरोसा किया और ये इस बार में जाकर छुप गए। एक तरह के फ्यूजिटिव्स हो गए ना, छुप गए जाते, वरना अगर देख लिए जाते तो पकड़े जाते, और पकड़ लिए जाते तो अपने प्रिजन की वजह से इनको मार दिया जाता, डेथ पेनल्टी दे दी जाती। अब वो है कि अल्लाह ताला ने मिराकुलसली इन नौजवानों को तकरीबन 300 साल के लिए सुला दिया। 300 साल तकरीबन, जो आपको बता रही हूँ जो काउंट आपको सूरह काहफ में मिलता है, अगर हम इसको एक राउंड फिगर में देखें तो 300 साल के लिए अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया। और आप जानते हैं कि जब ये उठे हैं 300 साल के बाद, तो जो पहली चीज़ इन्होंने फील की वो भूख थी, भूख लगी इनको। तो अपनी जेब में से एक ने करेंसी निकाल कर अपने एक दोस्त को दी कि तुम बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ, देखो बी केयरफुल कहीं हम पकड़े ना जाएं। तो जब ये शख्स 300 साल पुराना शख्स वापस उस बाजार में पहुंचा है जिसको समझ रहा था कि मैं अभी उठा हूँ और बाजार में गया हूँ, वहां पर जब ये आया तो ये शख्स वहां पर पहचाना नहीं जा रहा था, बिकॉज ये 300 साल पुराना शख्स था। इसका जो लिबास था वो पता चल रहा था कि वो माशरे में ब्लेंड इन करने वाला नहीं है। आप इमेजिन करें इस वक्त कोई पाकिस्तान जो अगर 300 साल पहले नहीं था, लेकिन आप इमेजिन करें कि किसी भी इलाके का रहने वाला 300 साल पुराना शख्स यहाँ आके खड़ा हो जाए, तो वो आपको लिबास के एतबार से, अपनी ड्रेसिंग के एतबार से फौरन एक अनयूजुअल सा बंदा लगेगा। तो ना सिर्फ इस शख्स का लिबास अलग था, इसकी जुबान 300 साल पुरानी अंग्रेजी अगर आज कोई बोले, या 300 साल पहले उर्दू तो मेरा ख्याल थी नहीं, अगर कोई 300 साल पहले जुबान आप बोलना शुरू कर दे तो आपको मुझे समझ नहीं आएगी, आपको और मैं तो अगर 100 साल पुरानी उर्दू भी सुने तो हमें समझ नहीं आएगी, इतनी मुश्किल होती थी। तो आप इमेजिन करें लिबास मुख्तलिफ, जुबान मुख्तलिफ, फिर जो उसने करेंसी निकाल के दिखाई वो करेंसी अब इस्तेमाल ही नहीं होती थी। सो दैट वाज अमेरिकन प्रॉब्लम देयर। तो बहरहाल वो पूरी कहानी फिर आप जानते हैं कि उसके बाद फिर वो एक मिस्ट्री थी जो सॉल्व हो गई, ये वापस गया, फिर अल्लाह ताला ने इनको फिजिकल डेथ दी, और उसके बाद जो था बाहर के लोगों ने इनके ऊपर जो थी वो दीवार बना दी। एक कहानी सूरह कहफ में आपको इन चंद नौजवानों की मिलती है जिन्होंने अल्लाह को ढूंढने के लिए स्टैंड लिया, एक ये लोग हैं, और अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर इनको 300 साल के लिए सुला दिया। दूसरी कहानी इसके अंदर कौन सी है, दो लोगों की, मसलन रजुलैन, दो मर्दों की, दो लोगों की जिनके पास बाग थे, जिनमें से एक के पास बाग थे। बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि प्रॉपर्टी टू सम एक्सटेंट दोनों के पास थी, लेकिन एक की प्रॉपर्टी को मेंशन किया गया और एक की प्रॉपर्टी इतनी मामूली थी कि उसको मेंशन करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा गया। जैसे अरबी जुबान में कहते हैं रुबा सुकून इन अगला कल कलाम, कभी कभी खामोशी आपको बहुत कुछ बता जाती है। तो ये जो दो लोगों की मिसाल आपको सूरतुल कहफ में मिलती है, दूसरी कहानी इसमें दो लोगों की कहानी बताई गई। जिनमें से एक ऐसा था जो बहुत मान रखता था, दुनियावी लिहाज से उसके पास परफेक्ट रिसोर्सेस थे। उसके दो बागों का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने उसको दो बाग दिए थे और वो दो बाग भी ऐसे थे कि जिनके दरमियान में दरिया बहता था, दरमियान में उसके जो थे वो पानी की अबंडेंस थी। आप देखिए बाग को मेंटेन करना आसान नहीं होता है। आप में से जिनके घरों में बाग होंगे आपको अंदाजा होगा, कराची शहर में रहते हुए और फिर मुझे नहीं पता बाकी जगहों पर क्या हाल है, बेचारा फेसमन में तो शायद पानी शायद ही कभी आता है, वरना तो टैंकर से हम लोग गुजारा करते हैं। तो बाग मेंटेन करना आसान नहीं होता है और ये बाग कोई घर का बाग नहीं था, ये तो इसकी एक तरह की इन सोर्स ऑफ इनकम था। इसका कूड़ा जो था एक फार्म हाउस था। तो जब बाग को चलाने के लिए बेसिक चीज चाहिए होती है वो पानी होता है, और अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी प्रॉपर्टी दी थी जो हर लिहाज से सुपर परफेक्ट 100% प्रोडक्टिविटी देने वाली थी। इसलिए जो सबसे पहली चीज थी पानी, वो खुद दरमियान में से बहता था दोनों बागों के। वरना आप सोचे ना, उस दौर के लोगों को पानी कैरी करने के लिए लोग चाहिए होते थे, जानवर चाहिए होते थे, तो वो एक जगह दूर जाके जानवर पहले दरिया के पास पानी लेकर आए, पानी को कैरी करें, फिर वो जानवरों को आराम कराते थे, फिर पानी स्प्रिंकल करने के लिए जानवर इस्तेमाल होते थे। इस सारे हैसल से अल्लाह ताला ने इस शख्स को बचाया हुआ था और अल्लाह ने इसके जो दोनों बाहों के दरमियान में पानी दिया था वो दरिया की शक्ल में था, यानी अबंडेंट सप्लाई थी, रुकती नहीं थी। नहर तो कभी रुक भी जाती है, बारिश नहीं हो रही तो नहर में पानी नहीं आया, कैनाल में पानी नहीं आया। दरिया के अल्फाज इसके लिए आते हैं अरबी ज़बान में कि जो दरिया बहता था वो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर के साथ बहता था। फिर अगर आप इसी सूरह काहफ में इसी बाग का डिस्क्रिप्शन पढ़े तो आपको पता चलता है कि इतना परफेक्ट बाग था कि इसके लिए जो इसके दरख्त में जो फल लगता था उकुलहा के अल्फाज आते हैं, समरहा के अल्फाज नहीं आते। हालांकि फल के लिए अरबी ज़बान में लफ्ज आता है समर, ता के साथ समर कहते हैं, समरात कहते हैं फलों को, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके फलों का जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो उकुलहा इस्तेमाल किया, यानी इसका हर फल आप इमेजिन करें एक दरख्त है उस पर 500 आम लगते हैं। अल्लाह ताला जब कह रहे हैं उकुलहा, इसका मतलब है उसके दरख्त का हर फल ईटेबल था, खाने के काबिल था। यानी मिसाल के तौर पर जो अगर सेब का दरख्त है तो जितने भी सेब लगेंगे ना कोई उसमें वक्त से पहले टूटेगा, ना किसी में कीड़ा लगेगा, ना कोई कच्चाई रह जाएगा, बल्कि प्रॉपरली राइप होने वाले फल उसके ऊपर लगते थे। तो जो अल्लाह ने उसको बाग दिया हुआ था वो बिल्कुल परफेक्ट बाग था और अपनी 100% प्रोडक्टिविटी देता था। तो बहुत मालदार इंसान था, बेहतरीन रिसोर्सेस रखता था, लेकिन इशू क्या था? एटीट्यूड का इशू था। इसलिए कि जो इसके साथ दूसरा इंसान था ये जानता था कि उसके पास इतनी बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई इतना बड़ा बाग नहीं है। एटीट्यूड इशू क्या था? जो अक्सर हम खवातीन में बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो दो मर्दों का जिक्र है लेकिन असल में ये बीमारी खवातीन की है और खवातीन मर्दों में भी होती है, लेकिन ये नहीं क्योंकि हम सब खवातीन यहाँ बैठी हैं तो हम में ये ज़्यादा बीमारी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा खवातीन आपस में बातें करती हैं, मिसाल के तौर पर बेटे की शादी हो रही है और वो फिर गुफ्तगू में बता रही है, या बेटी की शादी हो रही है और गुफ्तगू में बताया जा रहा है कि भाई हमने तो कहा था कि हम मिसाल के तौर पर बस 50 में खाना कर लेंगे। अब 50 का मतलब क्या? 50,000। हमने तो सोचा था बस हम बेटी का खाना 50 में कर लेंगे, वहाँ क्या करें, वो इतने सारे मेहमान बुलाते बुलाते बात वन तक चली गई, 1,000 तक चली गई, 1,00,000 तक चली गई। अभी गुफ्तगु हो रही है और गुफ्तगु किससे हो रही है? जो बराबर में खातून बैठी हैं उनकी अपनी 5 बेटियां हैं मिसाल के तौर पर, ये जानती हैं कि इनकी 5 बेटियां हैं और मुश्किल से वो अपनी बेटियों को एजुकेट कर रही हैं या बच्चियों की एजुकेशन पर खर्च कर रही हैं, बहुत मुश्किल उनका गुजारा हो रहा है। लेकिन ये जो खातून बैठी ये बात कर रही हैं भाई क्या करूँ, बेटी से मोहब्बत का इजहार तो करना था ना, आखिर बेटी है, ख्वाहिश तो पूरी करेंगे ना उसकी, ये कौन सा एटीट्यूड है? और अगर आप इनको अकेले में जाकर समझाने की कोशिश करें कि अच्छा एटीट्यूड नहीं है तो मैंने कोई बोस्टिंग थोड़ी की है, मैं तो फैक्ट बता रही हूँ, हम वाकई 50 खर्च करना चाहते थे। बहुत आराम से हमारे यहाँ शादियों के जोड़ों की बोस्टिंग नहीं होती है, शादी का जोड़ा कितने का बनाया बहू का? बस 25 का। क्या मतलब 25 का? दिस इज रिडिकुलस कि शादी का जोड़ा 25 का बन रहा है. माँ खुद माँ की जो लड़की की माँ होती है लड़की की माँ उसको आधा हार्ट फेल हो जाता है अगर उसको पता चल जाए कि उसकी बेटी का जोड़ा उसकी होने वाली सास से ज्यादा मार्केट से लेकर आ गई. हाँ मैं खुद था तो बोस्टिंग करने की बीमारी हमें है लड़कियों की माएँ भी पोस्टिंग करनी है. हमें पता है उसके ससुराल वालों ने कितना खर्च किया कितना खर्च किया. ये एटीट्यूड है. आप यहाँ देखें इस सूरह कहफ के अंदर जो अल्फाज आए हैं वो आए हैं वहुवा युहाविरुहु अना अक्सरु मिनका माला. ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन उसने एटीट्यूड शो किया. एटीट्यूड शो करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास तो बाप भी नहीं है देखो मेरे पास तो बाप है ये कहा नहीं. बट वहुवा युहाविरुहु हावरा युहाविरु होते हैं टू कॉन्वर्सेट विद समवन मुकालमा करते हुए गुफ्तगू करते हुए कॉन्वर्सेशन करते करते कह दिया. हम तो छुट्टियों के साथ में यहाँ गए थे तो वहाँ गए थे. अच्छा मरी अब तो वहाँ पुराना हो गया. हम तो स्विट्जरलैंड गए थे. What is this attitude? यही attitude है जो यहाँ बताया जा रहा है. अब क्या हुआ इस शख्स के साथ जो अपना एक body language से अपना boasting attitude, arrogance show कर रहा था. अल्लाह ताला ने इस इंसान के जरिए भी इसको कहा. आप देखिए मजलूम के दिल से जब आह निकलती है तो वो अश्क जाती है. इस शख्स ने इसको कहा था कि इतना मत इतराओ कि अल्लाह ताला तुम पर से ये नेमतें वापस ले ले. और यही हुआ. ओवरनाइट रातों रात आसमान के ऊपर से ताइफा एक फरिश्तों का कोई ग्रुप आया अल्लाह के हुक्म से इसका बाप सुबह उठते साथ दोनों के दोनों बाप बिल्कुल बैरन हो गए. कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता. अल्लाह के हुक्म से ये हुआ बिल्कुल इसके बाप जो थे वो बैरन हो गए ख़त्म हो गए. ये हुआ इस शख्स के साथ. और जो इसने कहा फिर उसके बाद रिग्रेट करते हुए इसने कहा वला उशरिकु बिरब्बी अहदा काश मैं ये शिर्क ना करता. हालांकि कौन सा शिर्क किया था इसने. इसने ये तो नहीं कहा था कि मैं अल्लाह को सजदा नहीं करूँगा मैं अपने बाप को सजदा करूँगा. ये किस चीज़ का शिर्क था. ये तकब्बुर का शिर्क था. ये अपने रिसोर्सेज के ऊपर अलायंस रखने का अपने रिसोर्सेज पर तवक्कुल करने का शिर्क था. ये एटीट्यूड का शिर्क था. बाज़ोकात हम ये नहीं कहते हैं कि हम अल्लाह की जगह किसी और की इबादत करते हैं. इसके लिए तो हम सब मानते नहीं हैं कि हम शिर्क करते हैं. हालांकि हम में से हर एक को शिर्क से वैसे ही बचना चाहिए जैसे कि किसी मुशरिक को शिर्क से बचना चाहिए. इसलिए जो शिर्क के जली होता है जो ऑब्वियस शिर्क होता है वो तो आंखों से नजर आ रहा होता है. तो इंसान की गलती आंखों से नजर आती है तो इंसान उसको रेक्टिफाई कर सकता है. लेकिन वो गलती जो आपको नजर ही नहीं आ रही आंखों से उसको रेक्टिफाई करना भी मुश्किल होता है. हमारे बुत हमारी नजरों के सामने नहीं है. हमारे बुत हमारे दिलों के अंदर है. हमारे बुत हमारे एटीट्यूड्स के अंदर है. हमारे बुत जो है वो हमारे दिमागों के अंदर है हमारे रवैयों के अंदर है. हम में से कोई भी नहीं कहता है कि हमने माल को या हमने वेल्थ को या हमने अपने सोशल स्टेटस को इलाह बनाया हुआ है. इसलिए हम सोशल स्टेटस को सरदर थोड़ी करते हैं. आप पढ़ें सूरह बकरा. अल्लाह ताला ने वहाँ फरमाया है वामिन नासी और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं मैयताखिदु जो बना लेते हैं मैयताखिदु औलिया अल्लाह नहीं وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا جو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیتے ہیں. انداد مد مقابل بنا لیتے ہیں رائیولز بنا لیتے ہیں. تو آپ کا سوشل ایٹیکیٹ آپ کا سوشل سٹیٹس آپ کا مال اللہ کے خلاف رائیول کیسے بن سکتا ہے انداد کیسے بن سکتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. ये है इशू. अपना सोशल स्टेटस इतना अच्छा लगे कि कहीं वो खो ना जाए. अपना घर इतना अच्छा लगे कि कहीं मैं इसको छोड़ के निकलूँ तो ये निगलेक्ट ना हो जाए. अपना रवैया एहसास ही ना हो कि किस वक्त वो शिर्क के अंदर बदल गया. ये प्रॉब्लम है. इसको देखने की ज़रूरत है. तो इस शख्स का जो शिर्क था वो इसके एटीट्यूड का शिर्क था. वो इसके अपने दुनियावी रिसोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करने का शिर्क था. अपनी दुनिया को सब कुछ समझने का शिर्क था. जिसकी सज़ा क्या मिली कि अल्लाह ताला ने ओवरनाइट इसके दोनों बापों को तबाह और बर्बाद कर दिया. तीसरी कहानी आपको सूरह कहफ के अंदर कौन से मिलती है. हज़रत मूसा अलैहि सलाम की और हज़रत हिजर की. हज़रत मूसा अलैहि सलाम के लिए आता है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम के ऊपर कौन सी किताब नाजिल की गई थी. तौरात नाजिल की गई थी. और आप पूरी हिस्ट्री वेस्टर्न हिस्ट्री उठाकर पढ़ लीजिए, पूरी वेस्टर्न हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट माना जाता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट? तौरात, बाइबल। इसलिए तौरात और बाइबल साथ साथ चलते हैं। आपकी पूरे ज्यूइश अकाउंट में वेस्टर्न हिस्ट्री में जो सबसे कंप्लीट ऑथेंटिक स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट समझा जाता है वो तौरात समझी जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम कुरान से पहले तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक के सबसे बड़े स्कॉलर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक वाक्य की वजह से कॉन्वर्सेशन की वजह से कहा कि मूसा आप भी इल्म हासिल करें, आप भी सीखें, और सीखने के लिए अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्शन दी कि फ़लाँ शख्स की तलाश में जाइए। और वो जो बड़ी मुश्किल से मूसा अलैहिस्सलाम जो है, वो सारी कहानी आपको सूरह काहफ में मिल जाती है कि उनके साथ उनका गुलाम था और फिर वो मछली जहाँ पर जा निकलनी थी वो जगह थी जहाँ पर पता चलता वो मिस आउट हुआ, फिर वो वापस आए। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम को किसी क्लासरूम के अंदर एजुकेट नहीं किया गया, किसी यूनिवर्सिटी में एजुकेट नहीं किया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ से एजुकेट किया गया। और मूसा अलैहिस्सलाम वो शख्स थे, मूसा अलैहिस्सलाम की अगर आपको सारी बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम हो कि मूसा अलैहिस्सलाम देखकर फौरन एक्शन लेने वालों में से थे, चाहे वो मामला हो मदीन से वापसी पर जब वो बैठकर इंतज़ार कर रहे थे और थक गए थे थोड़ा सा अपने आप को, वो रिलैक्स कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि चंद दो लड़कियां जो हैं वो अपनी बारी के इंतज़ार में बहुत देर से खड़ी हुई हैं, तो वो ऐसा नहीं था कि वो उनको जाके तकरीर करना शुरू कर देते जो वहाँ मर्द थे उनको साथ टाइम नहीं दे रहे थे लड़कियों को, उन्होंने वहाँ जाके स्पीच नहीं करनी शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत में फ़ौरन एक्शन लेने वाली आपको क्वालिटी नज़र आती है, उनको जहाँ लगता था कि यहाँ पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली बाल्टियाँ उठाई उन लड़कियों की और जाकर पानी भरकर उनको दे भी दिया और घर तक छोड़ दिया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की यही तबीयत आपको कैसे नज़र आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम से वो जो एक मदद के लिए एक शख्स ने लड़ाई में पुकारा और मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन जाकर उस व्यक्ति को एक पंच मारा और उसके बाद उसका कत्ल हो गया। इसलिए कि ताकतवर इंसान थे मूसा अलैहिस्सलाम। और अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी पढ़ें और आप अगर सीरत उमर रदी अल्लाह अन्हु पढ़ें तो आपको हज़रत उमर और हज़रत मूसा के अंदर बहुत सी चीज़ों का कंपैरिजन नज़र आता है, मिलती जुलती तबीयत थी, फौरन एक्शन लेने वाले। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी तबीयत थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मज़ीद हिकमत सिखाने के लिए इस एक इल्म हासिल करने के सफ़र के ऊपर रवाना किया। ये जो सफ़र इल्म का करना था ये मूसा अलैहिस्सलाम को करना था हज़रत खिज़र के साथ। अब जब हज़रत खिज़र के साथ मूसा अलैहिस्सलाम आए तो हज़रत खिज़र ने कहा कि देखें आप सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि जो तरीक़ाकार मेरे सिखाने का होगा वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप इमेजिन करें कि हज़रत मूसा से कह रहे हैं जो उस वक्त के सबसे बड़े स्कॉलर थे, जो बेहतरीन रसूल थे, जलीलुल क़दर रसूल, और उनके पास वो बेहतरीन कुरान का इल्म था, इसलिए कि कुरान से पहले तक का जो कम्प्लीट डॉक्यूमेंट था स्कॉलरशिप का वो यही दौरा थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सदा जिदू ने इंशा अल्लाह साबिर, आप मुझे इंशा अल्लाह साबिर पाएंगे। अगर आपको मालूम है ये सफ़र शुरू हुआ मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के साथ सबसे पहले एक कश्ती में सवार हुए, और जब जिस कश्ती में सवार हुए ये कश्ती चंद नौजवानों की थी। खिज़र जो हज़रत खिज़र थे ये मूसा को लेकर समझ लें कि कश्ती के लोअर डेक में चले गए, और वहाँ से कुछ वुडन प्लैंक्स जो होते हैं लकड़ी के जो प्लैंक्स होते हैं, अगर आपने कभी लकड़ी की बोट देखी हो तो स्ट्रेट बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल लकड़ियाँ होती हैं जिनको पैरेलल पैरेलल लगाया होता है। तो जो इसको डिस्क्राइब करते हैं स्कॉलर्स वो बताते हैं कि हज़रत खिज़र ने कुछ वुडन प्लैंक्स को निकालना शुरू कर दिया। अब क्योंकि कश्ती चल रही थी तो जैसे ही आप वुडन प्लैंक्स निकालेंगे तो पानी अंदर आ जाएगा, तो जैसे ही इन्होंने लकड़ी निकाली और पानी अंदर आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा अख़रक़तहा, आपने तो इसको ऐबदार कर दिया। हालांकि हज़रत खिज़र ने जो सबसे पहली कंडीशन मूसा अलैहिस्सलाम पर लगाई थी वो ये लगाई थी कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करें, तो पहला सवाल ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया अख़रक़तहा, आपने तो इसको ऐबदार कर दिया। क्यों ऐबदार कर दिया? लीतो गरीबा अहला, ताकि आप इन सारे कश्ती वालों को डिबो दें। तो बहरहाल वो कश्ती उस पानी के अंदर आने की वजह से साइड पर आई, वो सारे उतर गए, और हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओके ओके मैं दोबारा आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। कुछ और आगे गए तो उनको एक नौजवान वहाँ पर बच्चा मिला, उस बच्चे को क्या किया हज़रत खिज़र ने? हज़रत खिज़र ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। अब इसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, फिर सवाल किया आप कतल, आपने क्या इसको कतल कर दिया?
इसलिए कि मना किया था सवाल नहीं करना और फिर उन्होंने सवाल कर लिया। इसके ऊपर हजरत फैजल ने दोबारा कहा कि देखिए आपके लिए आसान नहीं है, लन तस्तति आमाइया सबरा, आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अच्छा मुझे एक चांस और देना है, एक चांस और दें मैं आपके साथ सबर करूँगा। कुछ और आगे गए तो अब जिस इलाके में ये लोग गए उस इलाके के लोगों के लिए याद है कि बहुत ही रूड थे, जिसको आप कहते हैं ना कि वो जनरल कॉमन हॉस्पिटैलिटी भी उनके अंदर नहीं थी। जैसे अगर कोई बहुत दूर से भागता हुआ है और आप देख रहे हैं बहुत दूर से भागता हुआ आ रहा है, गर्मी का मौसम है और बेचारा बिल्कुल जो है वो पसीने से शराबूर है और कहते हैं प्लीज़ पानी दे दें, प्लीज़ पानी, आपके मैं नहीं पानी दे रही, जाओ यहाँ से भाग जाओ। ये बिल्कुल जनरल कर्टेसी जिसको आप कहते हैं ना कॉमन कर्टेसी, इन लोगों के अंदर वो भी हज़रत मूसा को और हज़रत फिजर को नज़र नहीं आए। इतने रूड लोग थे कि जो बिल्कुल ख्याल करने वाले नहीं थे। इसी इलाके में हज़रत मूसा ने और हज़रत फिजर ने एक दीवार देखी जो ऑलमोस्ट गिर रही थी, ऑलमोस्ट गिर चुकी थी और बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी। तो हज़रत मूसा के साथ मिलकर हज़रत फिजर ने वो दीवार बनानी शुरू कर दी। जो मुफस्सरीन लिखते हैं वो लिखते हैं कि तकरीबन एक दिन लगा हज़रत मूसा और हज़रत फिजर को इस दीवार को खड़ा करने में। अब आप देखें ना दीवार बनाना आसान काम तो नहीं है, वो मट्टी कहीं से लेकर आते होंगे, फिर पानी डालते होंगे, फिर उसमें इकट्ठा करते होंगे, फिर कहीं से पत्थर ढूंढ के उसको दीवार बनाते होंगे। तो जो मुफस्सरीन उसको इलैबोरेटेड फॉर्म में बताते हैं वो कहते हैं कि इन दोनों को ये दीवार बनाने में तकरीबन एक दिन लग गया। आप इमेजिन करें सफ़र करते हुए आ रहे थे, इलाके वालों ने कोई खाना नहीं दिया था, कोई मेहमान नवाजी नहीं की थी, कोई हॉस्पिटैलिटी शो नहीं की थी, उसके ऊपर भी एक दिन लगाकर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी। मुफस्सरीन कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम ने समझा होगा कि शायद हज़रत फिजर टीम के साथ कोई कमिटमेंट है, तो चलो मैं तो इसके साथ ही मैं भी ये काम करने में इनका हेल्प आउट कर देता हूँ। तो जब दीवार बन गई तो हज़रत फिजर ने फिर सफ़र शुरू कर दिया। मूसा अलैहि सलाम हैरान हो गए कि ये क्या मतलब है, जब आप काम करते हैं, अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं बज़ाहिर हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है जब हम घर से निकल के वापस घर में जाते हैं तो चाहे हम कोई काम करके ना जाएं, कुछ हल्का फुल्का मंचिंग करने का, एटलीस्ट चाय पीने का तो दिल करता ही करता है। तो आप इनका इमेजिन करें कि उन्होंने पूरे दिन लगाकर दीवार बनाई, मेहनत की, अब भूख तो लग रही होगी। तो मूसा अलैहि सलाम ने इनसे कहा, सवाल नहीं किया। मूसा अलैहि सलाम कितने जीनियस थे, दो सवाल कर चुके थे, आखरा कतः, क्या आपने इसको एहदार कर दिया, आ कतलता, क्या आपने इसको कतल कर दिया। अब थर्ड टाइम जो मूसा अलैहि सलाम ने कहा तो सवाल नहीं किया था मूसा अलैहि सलाम ने, मूसा अलैहि सलाम ने कहा आला लौशीता लतफस्ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी उजरत एटलीस्ट खाना तो ले ही सकते थे। उन्होंने बस इतनी बात की, लेकिन हज़रत फिजर ने कहा कि बस अब आपका और मेरा सफ़र जो है वो यहीं तक मुकम्मल हो गया और मैं आपको अब सिखाता हूँ उन तीन वाक़यात की हिकमत जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ डायरेक्ट किया था। और वो जो मूसा अलैहि सलाम की नेचर थी जो मैंने आपके सामने रखी थी कि वो फ़ौरन एक्शन लेने वाले थे, वो हज़रत फिजर के साथ इसलिए अप्लाई नहीं कर सके कि अल्लाह ताला ने हज़रत फिजर के साथ अपॉइंट किया था। वरना आप सोचें कि एक शख्स लड़ाई में हेल्प के लिए बुलाता है और मूसा अलैहि सलाम भाग कर जाते हैं और दूसरे को पंच मार देते हैं, तो जब इन्होंने फिजर को कत्ल करते हुए देखा होगा तो उनको कितना गुस्सा आया होगा, आया होगा कि नहीं। इसलिए इनकी नेचर में था कि फ़ौरन एक्शन लेते थे, लेकिन इन्होंने सब्र किया, इन्होंने अपने आप को काम डाउन किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको अपॉइंट किया था। और अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को यही बताना चाहता था कि आपसे बढ़कर भी इल्म वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। हज़रत फिजर ने फिर ये सारी जो तीनों वाक़यात थे इनकी हिकमत मूसा अलैहि सलाम को बताई कि मैंने कश्ती को ऐबदार इसलिए किया था क्योंकि वो चंद नौजवानों की थी जो मेहनत करके मछलियाँ पकड़ते थे और अपना रोज़गार चलाते थे, लेकिन जिस इलाके में ये जा रहे थे वहाँ के बादशाह को अपनी आर्मी को एक्सपेंड करने के लिए कश्तियाँ चाहिए थी और उस इलाके में जिसकी भी अच्छी कश्ती आती थी बादशाह उसको कॉन्फिस्केट कर लेता था। तो इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती को इतना ऐबदार कर लिया कि बाद में नौजवान इसको ठीक भी कर लें और जो बादशाह है वो इसको अपनी आर्मी का हिस्सा बनाकर इनसे कश्ती छीन ना ले। दूसरा वाक्य जो हुआ था जिसमें उन्होंने एक बच्चे को कत्ल किया था, उसकी हिकमत हज़रत फिजर ने यह बताई कि अल्लाह ताला ने मुझे उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया इसलिए कि वो बच्चा बड़ा होके माँ बाप का नाफरमान होता, तो अल्लाह ताला ने उन माँ बाप को आजमाइश से बचा लिया और उनको और औलाद दे दी। और मुफस्सरीन कहते हैं कि असल में तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे के ऊपर भी रहमत की कि जो उसके बचपन में मौत आ गई। इस तरह से आप सोचिए बच्चा मासूम था ना, तो जब आपकी बलूगत से पहले मौत आ जाती है, अगर प्यूबर्टी हिट करने से पहले आपको इंतकाल हो जाता है तो दिस इज़ योर इनोसेंस एज, इसमें आपसे पूछ गछ नहीं होती है। जितने बच्चे भी प्यूबर्टी से पहले इंतकाल कर जाते हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ जन्ना, अहलुल जन्ना, تو اللہ نے اس بچے پر کیا رحمت کی کہ وہ بچہ جو کہ بڑا ہوتا تو نافرمان بنتا، ماں باپ کا نافرمان ہوتا تو آبویسلی اس کا ٹھکانا جنت تو نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ ماں باپ کو تو نقصان کرتا ہی کرتا، وہ خود بھی جہنم میں جاتا. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو اس کو موت دی حضرت خضر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی اس کا انجام بھی ایک برے انجام سے بچا لیا. تو اگر حالات ایسے ہو جائیں کبھی کسی کے اوپر کہ کسی بچے کے اوپر ایسی آزمائش آ جائے، تو آپ کو جو چیز اس وقت ہمت دے سکتی ہے وہ صرف یہ چیز دے سکتی ہے کہ اس میں اس بچے کی بھی خیر تھی اور اس میں ہماری بھی خیر تھی. آزمائش بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں. اللہ کسی پر ایسی، کسی ماں پر ایسی آزمائش نہ ڈالے کہ اس کو اپنی اولاد کا غم دیکھنا پڑے، لیکن اگر کسی پر آ جاتی ہے تو صبر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سوچ رکھی جائے کہ اس بچے کے لیے بھی بہتر یہی تھا اور ہمارے حق میں بھی بہتر یہی تھا. پھر جو تیسرا واقعہ حضرت خضر کے ساتھ ہوا تھا دیوار بنانے کا، اس پر حضرت خضر نے ایکسپلینیشن ایسے دی کہ دیکھیں آپ جس علاقے میں میرے ساتھ گئے تھے وہاں کے لوگوں میں بالکل بھی ہاسپٹیلٹی نہیں تھی، مہمان نوازی نہیں تھی، اور ان کو ذرا بھی احساس اور خیال نہیں تھا. تو وہ دو چھوٹے ینگ لڑکوں کی دیوار تھی جن کا باپ نیک آدمی تھا اور اس نے وہاں کچھ اپنا مال ان بچوں کے لیے چھپا کر رکھا ہوا. دیوار آلموسٹ گر گئی تھی، اگر اور تھوڑا وقت گزرتا تو دیوار پوری گر جاتی اور وہ مال ایکسپوز ہو جاتا، اور یہ جو اتنے کروڈ معاشرے والے ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس مال پر قبضہ نہ کر لیتے. تو اللہ کے حکم سے مجھے یہ کہا گیا کہ میں اس دیوار کو دوبارہ بلڈ کر دوں تاکہ بچے جب جوان ہوں تو وہ اس مال کو دوبارہ لے لیں. تو یہ تیسری کہانی آپ کو سورہ کہف میں ملتی ہے. چوتھی کہانی کون سی ہے؟ ذوالقرنین کی. ذوالقرنین کے پاس، ذوالقرنین بادشاہ تھا اور ذوالقرنین کے پاس دو چیزیں ایسی تھیں جو کہ بہت ریئر کمبینیشن، ایک اس کے پاس ہدایت تھی اور دوسری اس کے پاس پاور تھی، اور یہ بہت ریئر کمبینیشن ہے. آپ جن کے پاس پاور ہے ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، اور جن کے پاس ہدایت ہے ان کے پاس پاور نہیں ہے. سو اٹس اے ویری ریئر کمبینیشن جو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دیا تھا. اور ذوالقرنین کی جو خوبی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے ریسورسز دیے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے آتا ہے تم اقبا سببا، انہوں نے اپنے ہر ریسورس کو ٹو پرفیکٹ ایکسٹینٹ 100% استعمال کیا. اللہ نے ان کو جتنے ریسورسز دیے تھے اس سے انہوں نے صرف اپنے اکاؤنٹس کو بلڈ نہیں کیا، صرف اپنی ٹیریٹری ایکسپینڈ نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس کو امت کے لیے، لوگوں کے لیے، دنیا کو بہتر جگہ بنانے کے لیے استعمال کیا. انہوں نے ایسٹ پر سفر کیا، ویسٹ پر سفر کیا، اور دو تین طرح کی نیشنز کی طرف وہ گئے جو آپ کو سورہ کہف میں ملتا ہے. ایک وہ ایسے لوگوں کی طرف گئے جہاں پر ان کو لگا کہ یہاں کرائمس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ذوالقرنین کی یہ بیسک چیز آپ کو پرومیننٹ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی ہدایت اور اپنی پاور سے لوگوں کے اندر انصاف ڈسٹریبیوٹ کیا. ایک جس قوم کی طرف وہ گئے وہاں کرائمس بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے وہاں جا کر اپنی پاور سے لوگوں کے اندر یہ بات انگرینڈ کر دی کہ جو یہاں پر نیک ہوں گے ان کو ہم، ان کی ہم حفاظت کریں گے اور ان کو ہم نوازیں گے، اور جو یہاں پر ظلم کرنے والے ہوں گے ان سے ہم خود ڈیل کر لیں گے. یعنی آپ کو ذوالقرنین کے اندر یہ چیز ملے گی، بہترین پالیٹکس. انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ جو میری ایتھنسٹی کا ہوگا اس کو میں پوزیشنز اور اس کو میں منسٹریز دوں گا، جو میری پارٹی کا ہوگا بس اس کو منسٹریز ملے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو اچھا ہوگا اس کی، اس کا ہم خیال رکھیں گے، اور جو غلط کام کرنے والا ہوگا وی ول ڈیل وتھ دیم. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم دنیا میں بھی اس کو سزا دیں گے اور آخرت میں اللہ تو ان کی ناانصافی کی ان کو سزا دینے والا ہے ہی. دوسری طرف جو یہ نیشن کی طرف گئے وہ نیشن وہ تھی جن کے لیے آتا ہے کہ بہت سولائزڈ نہیں تھے، بس ایک آئسولیشن میں رہنے والے تھوڑے سے لوگ تھے. حضرت یہ جو ذوالقرنین ان کی طرف گئے انہوں نے وہاں، یہاں پر جا کر ان کے اندر بس انصاف کا سسٹم اسٹیبلش کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں پر ریلوے اسٹیشن بنا دیں گے، ہم یہاں پر آپ کی جو ہے وہ میٹرو بس بنا دیں گے، ہم یہاں پر بہت بڑا سا ایئرپورٹ بنا دیں گے. اس میں بھی حکمت ہے. اصل میں جو چاروں کہانیاں ہیں سورہ کہف کی، ان چاروں کہانیوں کے اندر اتنی حکمتیں موجود ہیں کہ آپ ایک گھنٹے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ذوالقرنین کا واقعہ بہترین ہے دنیا کی انجینئرنگ، دنیا کی پالیٹکس، دنیا کا اکنامک سسٹم سمجھنے کے لیے بہترین اگزامپل ہے. یہ جس نیشن میں گئے، جو درمیان کی نیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھرڈ ورلڈ ٹائپ نیشن تھی. ذوالقرنین ایک بہت ایلیٹ کلاس سے سپر پاور تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم یہاں پر آپ کو یہ 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 بنا کر دیں گے اینڈ دین یو ول بی آر سلیو، یہ کام نہیں کیا. انہوں نے اس نیشن کو ایز اٹ از چھوڑ دیا، صرف ان میں انصاف ڈیولپ کر دیا. تیسری جس قوم کی طرف ذوالقرنین گئے، وہ ایک ویلی میں رہتی تھی، چاروں طرف پہاڑ تھے اس کے، اور ان کو ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہاں سے ریڈرز آتے تھے، جن کو آپ یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانتی ہیں، وہ ریڈرز آتے تھے اور ان کو ان کے اوپر لوٹ مار کر کے اور ان کا میسیکر کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو جب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے تو اس قوم نے کہا کہ دیکھیں آپ ان کے خلاف ہمارے لیے کوئی سپورٹ سسٹم بنا دیں۔ ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیٹ می کال مائی آرمی فرام مائی پلیس، میں آرمی کو بلاؤں گا، وہ آپ کے ریسورسز پر رہے گی، وہ آپ سے کھانا لے گی، وہ آپ سے پے لے گی، سیلری لے گی، اور پھر ہم کچھ کریں گے۔ ذوالقرنین نے انہی لوگوں کو استعمال کیا اور پھر کیا بنایا، دیوار بنائی، اس چاروں طرف ایک دیوار۔ اور جس طرح سے دیوار بنانے کو سورہ کہف کے اندر، جس انجینئرنگ کو سورہ کہف کے اندر دیوار بنانے کی بیان کیا گیا ہے، وہ انجینئرنگ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سمپلی کہہ دیتے کہ انہوں نے دیوار بنا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوہا میٹل پگھلایا گیا، پھر وہ ڈالا گیا، پھر اس کو ریس کیا گیا، پھر پگھلایا گیا، پھر ڈالا گیا، اٹس اے ہول میکینیکل پروسیس جس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی جو سائنس ہے اس کو خود یہاں پر لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کبھی نہیں یہ کہتا کہ صرف سیکرٹ نالج حاصل کرو اور ریکوائرڈ نالج کو ایک طرف کر دو، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ بس آخرت مل جائے دنیا تو فقیروں کی طرح گزر جائے، نہیں، دنیا ملتی ہے الحمدللہ، آخرت ملتی ہے الحمدللہ۔ ذوالقرنین نے یہ دیوار بنانے کے بعد بھی یہ بھی میں ایٹیٹیوڈ نہیں تھا کہ جس کے لیے آتا ہے کہ انہیں لوگوں کو استعمال کیا، اور وہ کئی مہینوں میں دیوار کھڑی ہوئی، اور وہ دیوار ایسی کھڑی ہوئی، اتنی مضبوط دیوار بنائی کہ یاجوج و ماجوج دوبارہ اس دیوار کو کراس کر کے نہیں آ سکے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں دس از آر ماسٹر پیس ایکچولی جو ہم نے بنایا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں الیکٹ کریں گے، اس کام کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا، قال ھذا رحمۃ من ربی، کوئی کہتا ہے پولیٹیشن آج کے بعد ھذا رحمۃ من ربی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، میرا کیا کمال ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اور کمال دیکھیں، ہمارے یہاں اسپیچز کیسی ہوتی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور ہم نے یہ کیا، اور ہم جب آگے آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، اور اس کو تو ایسی تو کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی جس کے بعد یاجوج ماجوج اس کو کراس کر کے آ نہیں سکے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اتنے مہینوں کی محنت کے بعد، اتنی مضبوط دیوار بنانے کے بعد، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا حکم آئے گا، یہ کتنی بھی مضبوط دیوار ہے، اٹ ول کریش، یہ گر جائے گی، جب میرے رب کا حکم ہوگا یہ گر جائے گی، اسمیش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے، ریسورسز کا استعمال تو ہے لیکن ان ریسورسز پر توکل نہیں ہے، ریسورسز تو اس باغ والے کے پاس بھی تھے۔ واٹ از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دیٹ باغ والا اینڈ ذوالقرنین، دا ڈفرنس آف ایٹیٹیوڈ۔ دنیا ہونا برا نہیں ہے، دنیا ہو کے میرا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے یہ برا ہے، اگر میں دنیا پر ہی صرف اپنے جو ہے توکل کروں یہ برا۔ یہ چاروں کہانیاں، یہ چاروں کہانیاں بظاہر ہسٹری میں بری طرح سے یوں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ چاروں کہانیاں قرآن میں، مصحف میں، ایک صورت میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ بظاہر چاروں بالکل الگ الگ لگتے ہیں لیکن چاروں میں ایک کنیکشن۔ اب دیکھیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دو دنیائیں بنائی ہیں، ایک وہ ہے جو اس وقت اس دنیا میں ہم موجود ہیں، جس کو کہتے ہیں عالم شہادت، جو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یہ عالم شہادہ ہے۔ ایک اور دنیا ہے جس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ، قیامت، صحیح، قبر کے بعد کے حالات، یہ کیا ہے، یہ عالم الغیب ہے، دس از ان سین، یہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان چار واقعات میں دو واقعات جو ہیں ان میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، اچھا اتنا ہے، اللہ ہمارے عالم الشہادہ میں وزیبل ہے، اللہ انویزیبل ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، صحیح۔ یہ جو چار واقعات ہیں سورہ کہف میں، ان میں دو واقعات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عالم الشہادہ میں انٹروین کیا ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جو پہلا آپ نے اس میں واقعہ سنا، اصحاب کہف والا، دنیا کی کوئی پل ایسی نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ ایسی نہیں ہے، کوئی کھانا یا ڈنر یا لسی آپ ایسی نہیں پی سکتے جس کو پی کے آپ سوئیں تو 300 سال کے بعد اٹھیں۔ کوئی ہے ایسا کھانا، کوئی ہے ایسی ٹیبلٹ، نہیں، ہاں آپ بہت سارے ٹیبلٹ کھا جائیں تو پھر آپ ایسے سوئیں گے، نہیں اٹھیں گے، روزے محشر اٹھیں گے یا قبر میں اٹھیں، اللہ نہ کرے ایسے حالات ہیں، یہ اصحاب کہف کا 300 سال کے لیے سو جانا اللہ تعالیٰ کا اس عالم الشہادہ کے اندر اپنی انٹرونشن شو کرنا ہے، اللہ کا ظاہر ہو جانا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے اپنی جھلک دکھائی ہے عالم الشہادہ میں. دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ دو بابوں والا، اور دو بابوں میں سے جس کے باپ تھے اس کے باپ تباہ کیسے ہوئے تھے؟ آسمان سے آفت آئی تھی نا، تائفۃ فرشتوں کا کوئی گروہ آیا تھا، کوئی یقیناً کوئی زلزلہ ہوگا، کوئی ٹارنیڈو ہوگا، کوئی سائیکلون ہوگا، کوئی تھنڈر اسٹارم ہوگا، کچھ بھی ہوگا. تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ نیچرل کلیمٹیز. نیچرل کلیمٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ اس سے انٹروینشن فرام اللہ. نیچرل کلیمٹی جب آئے گی اللہ عالم الشہادہ میں اپنا تھوڑا سا اظہار کرتا ہے. صحیح. دو واقعات میں آپ کو صرف اور صرف اللہ نظر آ رہا ہے، زلزلہ آئے اور اوور نائٹ پورا شہر تباہ ہو جائے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اٹس کمپلیٹلی اللہ، اٹس ان دی ہینڈز آف اللہ. ایک 6 انسان سوئے 7 انسان سوئے اور وہ 300 سال تک سوتے رہے، اور پھر وہ نارمل انسان کی طرح اٹھ بھی گئے ہیلدی، کسی کو بیڈ سور بھی نہیں ہوئے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. تو ان دو واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے عالم الشہادہ. جو باقی دو واقعات ہیں، موسیٰ اور خضر والا اور چوتھا کون سا ہے؟ ذوالقرنین والا. اللہ تو ان میں بھی، مثال کے طور پر یہ مصحف میں نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کہیں میں کہوں یہ مصحف میں نے اٹھایا ہے، آپ کہیں نہیں اللہ نے اٹھایا ہوا ہے. سر سر اللہ نے اٹھایا ہوا ہے اٹس ایکچولی ٹیکنیکلی ناٹ اے رائٹ سینٹینس، میں نے اپنے مسلس کھول کیے ہیں تو میں نے اٹھایا ہوا، بٹ ہو گیو می دا پاور ٹو ریز مائی ہینڈ لائک دس. ہے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں بظاہر اللہ چھپ جاتا ہے، انسان سامنے آ جاتا ہے، میری ایفرٹ سامنے آ جائے گی اس کو اٹھانے کی. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھے گریڈ کے ساتھ اے اسٹار لے کر آ گیا پورے رزلٹ میں، اسٹریٹ ایز لایا تو ہمارا بچہ، ایفرٹ اس کی تھی، بٹ پیچھے اذن کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، اور اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں جب انسان کا ایفرٹ اس میں مل جاتا ہے تو دس از اے ہیومن ویکنیس، اللہ کا ہی پیچھے ہو جاتا ہے، انسان سامنے آ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اور میں چل کر یہاں آئے ہیں، صحیح، ہم میں سے کتنوں کو چل کے آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے، گھر سے نکلنے سے لے کر عابدہ کے گھر میں یہاں نیچے بیسمنٹ تک آتے ہوئے ہم میں سے کس کو ایک مرتبہ بھی یاد آیا اللہ مجھے چلا کر یہاں لے کر آیا ہے؟ ہم جلدی جلدی ٹائم جا رہا ہے، الحمدللہ اگر کسی کو خیال ہے اللہ کی رحمت، الحمدللہ. لیکن جنرلی مجھ سمیت، مجھے بھی یاد نہیں، میں کھڑی دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی. اس لیے کہ دوپہر میں میری ایک میٹنگ تھی، صبح میری کلاس تھی، اور اس کے بعد میں ہارڈلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو شکل دکھاتے ہوئے آ رہی ہوں. تو کبھی کبھی ہوتا یہ کہ آپ اتنا زیادہ اوور آکیوپائڈ ہوتے ہیں کہ آپ بھول ہی جاتے ہیں کہ اصل میں مجھے چلانے والا کون تھا؟ اللہ تھا. تو اس عالم الشہادہ میں بہت آسانی سے ہماری نظروں سے اللہ اوجھل ہو جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے صرف ہماری ایفرٹ ہے. موسیٰ اور خضر کا معاملہ ہو، ذوالقرنین کا معاملہ، اصل میں موسیٰ اور خضر کے معاملے میں جو پلانٹس نکالنے والے تھے وہ تو بظاہر کون تھے؟ حضرت خضر تھے، لیکن وہ کرا کون رہا تھا؟ اللہ کرا رہا تھا. اس بچے کو قتل کرنے والے ہاتھ تو خضر کے تھے، کس کے حکم سے ہو رہا تھا؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا. وہ دیوار کو دوبارہ کھڑے کرنے کا پلان بند تو موسیٰ اور خضر کے ہاتھوں سے رہی تھی، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے اس میں وہ جو دیوار انہوں نے بلڈ کی، بظاہر یہ تو نہیں ہم کہتے اللہ نے بلڈ کی، ہم کہتے ہیں ذوالقرنین نے بلڈ کی، اور قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے اس کو بلڈ کیا، وہ سب اللہ کے حکم سے رہا تھا. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا ہمیں بہت تیزی سے اللہ کو بھلا دیتی ہے. یہ سورہ کہف ہمیں کیوں بار بار پڑھنی ہوتی ہے؟ یہ سورہ کہف کا ہمیں ہر جمعے کیوں جو ہے وہ اعادہ کرنے کا کہا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس عالم شہادہ میں رہتے ہوئے یہ بات جان لیں کہ ہمیں ہر چیز اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو. میں صرف اتنی سی بات آپ کو آج بتانا چاہ رہی ہوں. یہ سورہ کہف آپ کو اور مجھے یہی چیز بار بار ریمائنڈ کرانے کے لیے ہر جمعے کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، कि मैं वापस आकर जब इस कुरान में सूरह कहफ के सामने बैठूं तो मुझे याद आ जाए कि अच्छा मुझे ये सूरह कहफ पढ़ने का कहा क्यों गया था। अल्लाह ये कभी नहीं कहता। हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है, बनता जा रहा है, इल्म की कमी की वजह से आ गया। हम कहते हैं जो इंसान दो, हम कहते हैं या तो इंसान दुनिया वाला हो सकता है या इंसान आखिरत वाला हो सकता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आप लोगों का ना हो बट इससे जनरल कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि लोग ये क्या बात है, तुम मिसाल के तौर पर मुफ्ती नहीं बन रहे, तुम इंजीनियर बन रहे हो। आप ये बताएं जो ज़ुल्कुरनैन ने किया है, जो इंजीनियरिंग यहाँ इस्तेमाल हुई है, वो इंजीनियरिंग आपको मेडल की स्टडी से ही पता चल सकती है। वो इंजीनियरिंग आपको सिर्फ दो रकात पढ़ने से नहीं पता चलेगी। आप क्या, मैं यहाँ बैठी हूँ, खुद ही आ जाएगा मेरा जो रिस्क है। ईमान आपका और मेरा है तकदीर पर, लेकिन ये बताएं इस्लाम असबाब इख्तियार करने की दावत देता है कि नहीं देता। असबाब इख्तियार करने हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ लेकर चल रही हैं। और ज़ुल्कुरनैन का वाक्य आपको मुझे ये बता रहा है कि जो अल्लाह ताला ने इंसानी एफर्ट को प्रोमिनेंट रखा है आलम शहादा में, वो इसलिए रखा है कि इंसान अपनी कोशिश भी करे और साथ साथ अल्लाह को भी याद रखे। बास कॉलेज ने बहुत प्यारी बात की, वो कहते हैं यूँ समझ लें कि एट ए टाइम आलम शहादा भी मौजूद है और आलम गैब भी मौजूद है। इसलिए क्या हमारा ईमान है कि इसलिए यहाँ इस वक्त यहाँ पर बहुत से फरिश्ते हैं जिन्होंने इस घर को अपनी इस जगह से लेकर आसमान दुनिया के आसमान तक कवर किया हुआ। इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस बताती हैं कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र किया जाता है उस जगह फरिश्ते जो हैं वो उसको उस घर से लेकर, उस मस्जिद से लेकर, उस जगह से लेकर पहले आसमान दुनिया तक कवर कर लेते हैं। ये हमारा ईमान है। सो एट ए टाइम इस वक्त आलम शहादा और आलम गैब दोनों मौजूद हैं, आपको और मुझे नजर नहीं आ रहे। उलमा कैसे बताते हैं, इट्स बीइंग लाइक आलम गैब इज बिहाइंड द कर्टन। और जो खिजर और मूसा का टिपिकल एक वाकया है इस पूरी सूरह कहफ में, उसमें सिर्फ ऐसा है जैसे एक पर्दा लिफ्ट करके उसकी हकीकत बता दी गई कि बच्चा कत्ल क्यों किया गया, दीवार क्यों बनाई गई, उस कश्ती को ऐबदार क्यों किया गया। आलम गैब तो मौजूद अभी भी है, लेकिन मूसा और खिजर के वाक़े में उस पर्दे को बस हल्का सा लिफ्ट कर दिया गया ताकि इंसानियत को हकीकत बता दी जाए कि अल्लाह हर फैसले के पीछे होता है, अल्लाह की कुदरत हर फैसले के पीछे होती है। इस चीज को अगर आप समझेंगे, इस फैसले को अगर आप समझेंगे तो आपको चीजों को बहुत आसानी से ट्रैक करना, समझना आ जाएगा। आज मैं और आप जिस दौर में रहते हैं, इस दौर में या तो हम और हमारे बच्चे हैं, या तो वो दुनियादार बनते हैं या वो दीनदार बनते हैं। जो जरा सा भी दीन की नॉलेज की तरफ आता है उसको लगता है कि अब स्कूल जाने की और यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है, अम्मा मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में, अम्मा मुझसे ये चैलेंजेस फेस नहीं होते। दे हैव टू चेंज द चैलेंजेस, दे हैव टू फेस द चैलेंजेस, उनको करने हैं। अगर वो इन चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो उनकी तरबियत कैसे होगी। और माँ को माँ का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के अंदर ये खूबी डाल देना कि वो दुनिया में जो काम भी करें उनको याद रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, लेकिन याद रखें नामुमकिन भी नहीं है। बास काम मुश्किल होते हैं, नामुमकिन नहीं होते। आज के दौर में इस 2017 में रहते हुए औलाद को दीनदार बनाना नामुमकिन नहीं है, क्या है, मुश्किल। अगर हम कहेंगे ना बहुत मुश्किल तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, मुझे सॉरी मैं बाहर दूसरे बच्चों को जाके तो पढ़ा सकते हो, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी कि दुनिया के बच्चे आपकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो आपके अपने बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसका मतलब क्या है कि माँ बताना छोड़ दें,
नहीं।
माँ का काम क्या है, माँ उस टेप की तरह चलती रहे चलती रहे चलती रहे जो चलती रहती है और एक ही जुमला एक ही टोन में बोलती जाती है और बोलती जाती है और नहीं रुकती है। हाँ, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितनी भी यहाँ माएँ बैठी हैं, आपको दुनिया के हालात, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपके स्कूल में आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, आपके स्कूल में आपके बच्चों के क्या डिस्कशंस होते हैं, आपको मालूम होने चाहिए। आपके बच्चों को स्कूल्स के अंदर, बाहर के मुल्कों में तो बहुत खुले नाम, और खैर आप पाकिस्तान में कराची में भी बहुत से स्कूल्स के अंदर खुलेआम एग्नोस्टिक्स बनाया जा रहा है। खुलेआम इसलिए कि डिस्कशंस होते हैं और डिस्कशंस के अंदर ऐसे सवाल थ्रो किए जाते हैं जिससे बच्चा कम से कम कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। आज अगर आप और मैं दीन के बारे में कंफ्यूज होंगे तो जरा अंदाजा कर लें कि आपकी और मेरी औलादें दीन के बारे में कितना कंफ्यूज होंगी। आपकी और मेरे मसलों का हल इस किताब में मौजूद है। ईमान है आपका? अगर ईमान है तो आप जरूर इस किताब के सामने जाकर बैठेंगे, आप जरूर इस किताब को खोलेंगे, आप जरूर अपने दिल की सही ग्रोथ के लिए, अपने दिल की सही ग्रूमिंग के लिए, अपने दिल की सही क्लेंजिंग के लिए आप सही जगह का इंतखाब करेंगे। मिसाल के तौर पर बहुत आम सी मिसाल बता रहे हैं, आपको अपने बाल डाई करवाने होते हैं, सही? पार्लर तो जाते हैं? पार्लर नहीं जाते? अल्लाह तो इतनी वलीउल्लाह खवातीन बैठी हो तो शर्मिंदा ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके जैसा तकवा हम सबको दे।
जब से पता चला कि ये चीज सही नहीं है, बालों पे लगा लो, इजाम और खवातीन नहीं लगानी चाहिए, जब से लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है, सही। देखें, चले आप किसी भी काम के लिए, चले डॉक्टर हॉस्पिटल का या क्लिनिक का मामला ले, पार्लर छोड़ देते हैं, आप जब हॉस्पिटल जाते, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान के साथ ज़िंदगी दे, मगर बीमारी इंसान के साथ लगी हुई है। जब इंसान है, आपकी और मेरी फिजिकल बॉडी है, तो जाहिर है बीमारियाँ भी होंगी, इसलिए कि बैक्टीरिया और वायरसेस हमला करते हैं। जब आपके ऊपर बीमारी आती है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बेहतरीन जगह का इंतखाब करते हैं। जब आपके बच्चे को किसी अच्छे करियर को अडॉप्ट करना होता है, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी और स्कूल में भेजते हैं। जब दीन का मामला आता है तब हमें क्या हो जाता है? जितनी एफर्ट हम अपने बच्चों के दुनिया के इल्म के ऊपर लगाते हैं, अगर उसका 5% 100% में से 5% कुछ भी नहीं है, अगर उसका 5% हम अपने बच्चों के दीन बनाने में भी फिक्रमंद हो, तो ये नस्ल ऐसे नहीं बिगड़ेगी जैसे बिगड़ रही है। अगर माँ कंफ्यूज है, अगर माँ के हाथ में कुरान जो है वो सिर्फ बीमारी में आता है, अगर माँ जो है वो समझती है कि कुरान सिर्फ और सिर्फ बस जो है वो सुबह शाम पढ़ने की किताब है पढ़ने की किताब, बट दिस इज अ बुक ऑफ गाइडेंस। मैं शौहर कैसे अपना जो है उसको अपने साथ जो है मोहब्बत करने वाला बना सकती हूँ, मैं अपनी माँ का हक कैसे अदा कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी का हक कैसे अदा कर सकती हूँ, मैं अपने इन-लॉज और अपने मैके को किस तरह से बेहतरीन तरीके से ले कर चल सकती हूँ, कहाँ है ये सब चीज़ें? इसी किताब में है, कहीं और नहीं है। हर तीसरी चौथी औरत जो है वो साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों भाग रही है? सुकून क्यों नहीं है हमारी जिंदगियों में? परेशानियां क्यों? हम में से बहुत से लोग तो सूरह कहफ हर जुमे पढ़ते हैं, फिर भी हमें अल्लाह याद नहीं रहता है। परेशानी आती है और परेशानी के बाद दूसरी परेशानी और तीसरी परेशानी और चौथी परेशानी, तो उसके बाद जो है 2 महीने के अंदर हमारे ईमान लरस जाते हैं। क्यों हमारे ईमान लरस जाते हैं? फिर हम कहते हैं कि अच्छा किसी से दम करवा लेते हैं। आप अपने अपने ऊपर जैसा अच्छा दम खुद कर सकती हैं, कौन आपके ऊपर ऐसा दम करेगा? दम कभी नहीं, आपका दम ही ना निकाल ले। और जो दम निकलते हैं, दम कराते कराते जरा कहानियां तो सुने। हमारे ईमान कमजोर क्यों है? हमें आलिमुल गैब याद नहीं रहता है। हम तो बहुत कुरान पढ़ते हैं, मैं तो महीने में 6 कुरान खत्म करता हूँ, मैं सुबह कहा 15 मिनट में पढ़ लेती हूँ। सॉरी, आप जैसे कोई अगर ये कहेगा कि मैं सुबह कहा 15 मिनट में पढ़ लेती हूँ, तो मेरी तरफ से उसको कोई बैच ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि अगर आप प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ेंगी तो आप 15 मिनट में सूरह कहफ नहीं पढ़ सकती। मैं खुद एक सिटिंग में सूरह कहफ मुकम्मल नहीं पढ़ सकती, मैं थक जाती हूँ। मैं तो स्लॉट्स रखती हूँ कि मैं इतना पढ़ूंगी, फिर इतना पढ़ूंगी, फिर इतना पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बट मैं सूरह कहफ हर जुमे को पढ़ती हूँ, मैं कुरान महीने में 6 खत्म कर लेती हूँ, मैं तो अपनी जो है वो इसकी तस्बीह 100,000 दफ़ा पढ़ती हूँ और इसकी तस्बीह 100,000 दफ़ा पढ़ती हूँ। ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर 3 बेटियों के बाद चौथी प्रेगनेंसी होती है तो आपके दिल में यह खौफ क्यों बैठ जाता है कि अगर फिर बेटी हो गई तो? तो सूरह कहा आपको क्या सिखा रही है? ईमान बिल्लाह कमजोर है, ईमान बिल्लाह मजबूत नहीं है, ईमान बिल आखिरा कमजोर है। हर प्रेग्नेंट औरत जो पहली दफा प्रेग्नेंट होती है उसको हमेशा दिल के अंदर एक ख्याल और दुआ क्यों रहती है, या अल्लाह पहला बेटा दे दे, या अल्लाह पहला बेटा दे दे। क्यों क्यों होता है? इसलिए हम अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस का हमारे ऊपर जो है यलगार है। हमें लगता है कि बेटा होगा तो शायद हमारी शादी सेफ रहेगी, रिश्ता सेफ रहेगा, ससुराल की पोजीशन आ जाएगी, और फिर वो डे वन से माँ और बेटे की अनहेल्दी डायनेमिक होती है। एक माँ बेटे की माँ सारी जिंदगी अपने बेटे के गिर्द तवाफ करती रहती है, 20 साल तक उसके गिर्द तवाफ कर रही है, 22 साल की उसकी शादी कर देती है, और फिर जो बहू आती है बहू की अलग कहानी और सास की अलग कहानी शुरू हो जाती है। फिर जो बहू आती है तो उसके बाद फिर वो बेटा बेचारा वो क्या बन जाता है? वो तो वो जो स्पिन, वो जो पीको करने वाले की उसके ऊपर मशीन के ऊपर वो उसकी जो वो चल रही होती है ना स्पिन करती, मुझे लगता है कभी कभी आप बेचारे पर्दों का हाल होता है क्या मान लीजिए क्योंकि चार सीधे सीखता हूँ। तो अक्सर बहुत सी खातन से शादी ब्याह के टॉपिक पर बात करने का मौका मिलता रहता है, और अगर मैं इन्हीं बातों को सोचती ना, मैं किसी ऐसे पीको वाले के पास जाकर खड़ी हो जाऊँ तो वो जो उसके ऊपर नलकी लगी हुई होती है जिस तरह घूम रही होती है बेचारा वो मर्द नजर आ रहा होता है। ये सास बहू का झगड़ा कोई झगड़ा है ही नहीं, दिस इज अ रिडिक्यूलस थिंग। क्या एक बेटे की माँ उसकी बीवी की जगह ले सकती है? क्या बीवी माँ की जगह ले सकती है? पॉसिबल जैसा माँ से मोहब्बत की जाती है वैसी बीवी से मोहब्बत नहीं की जाती, और जैसी बीवी से मोहब्बत की जाती है वैसी माँ से मोहब्बत नहीं हो सकती। दिस इज रिडिक्यूलस। और बेवकूफ होती हैं वो माएँ और वो बीवियाँ जो बीच में शौहर को बैठा कर पूछते हैं बताएं इससे मोहब्बत ज्यादा है कि मुझसे मोहब्बत ज्यादा। फिर हम कहते हैं कि शौहर बदमिजाज पड़े हैं आजकल, लगता है किसी ने जादू कर दिया, आपकी हिमाकत और आपके वजन के बढ़ने ने शायद उनके ऊपर जादू कर दिया हो तो कर दिया हो, और वो जादू नहीं कर पाते। ये कुरान समझकर पढ़ें, ये कुरान ईमान बढ़ाने के लिए पढ़ा जाता है। हम इतना कुरान पढ़ते हैं, हम इतना कुरान सुनते हैं, कितनी मरतबा आंखों से आंसू निकलते हैं? आखिरी मरतबा कौन सी नमाज थी जिसमें तिलावत करते हुए क़याम में सूरह फातिहा के बाद जो आपने आयात पढ़ी उसमें आपको रोना आया? शायद वो पिछला रमजान था, शायद कोई अगर ऐसा कुछ नसीब हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये पिछला रमजान था। हम हर जुमे को सूरह काफ पढ़े और हमारा आखिरत पर और अल्लाह पर और तकदीर पर ईमान मजबूत नहीं हो, इसका मतलब है कि कहीं बहुत बड़ा गैप है। ये सूरह काफ आपको और मुझे दुनिया की रंगीनियों से बचने का बेहतरीन तरीका बताती है कि इस दुनिया में रहें। इस्लाम रहबानियत इख्तियार करने की बात नहीं करता, इस्लाम नहीं कहता छोड़ दो यूनिवर्सिटीज़ को, छोड़ दो स्कूल्स को, छोड़ दो इंडस्ट्रीज़ को, छोड़ दो अपने सोशल सिस्टम्स में, चले जाओ जंगलों में और मोनास्ट्रीज में जाकर बैठ जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम कहता है दुनिया में इंटरेक्शन करो बट विदाउट अटैचमेंट। दुनिया शुड बी इन योर हैंड बट नॉट इन योर हार्ट। दुल्कुरनैन का मामला यही था, दुनिया के बेहतरीन रिसोर्सेज थे उनके पास लेकिन वो रिसोर्सेज उनके हाथ में थे, उनके दिल में नहीं थे। दिल में कौन था? कहना आसान है, दिल में अल्लाह था। अपने अपने दिलों में झांक के देखें हमारे दिलों में कितना अल्लाह मौजूद है, कितना हमने अपने दिल के अंदर अल्लाह को रखा हुआ है, कितना मुझे दिन भर अल्लाह याद ना आए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। उन माओं का सोचें जिनके बेटे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर बेटे का 3 हफ्ते तक फोन नहीं आया तो माँ की जरा परेशानी का आलम तो देखें, 3 हफ्ते तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहे हैं जबकि आजकल जो है वो सोशल मीडिया ने इतना करीब कर दिया है। अगर किसी बच्चे का 3 दिन तक फोन नहीं आता तो माँ की हालत तो देखें, और एक औरत को 3 दिन तक कुरान पढ़ना याद नहीं आता तो हम कितना परेशान होते हैं। हम कहते हैं हाँ जुमे को पढ़ लेंगे, सूरह काहफ पढ़ लेंगे, और सूरह काहफ पढ़ते हैं और उसके बाद भी दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकलती اس کا مطلب ہے کہ اتنے بلک میں سے میں نے اپنے لیے عمل کے لیے کچھ بھی نہیں اٹھایا. اس چیز کو سمجھیں, اس چیز کی گہرائی کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا قرآن پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں, اور جو سمجھ آئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اسی عالم الشہادہ میں رہتے ہوئے عالم الغیب پر یقین اور ایمان کو مضبوط بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم ماؤں کو اور ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے ریسورسز کو ہارنیس بھی کریں اور ان سے اپنی آخرت بھی کما سکیں. اس لیے کہ آپ کو اور مجھے یہی سکھایا گیا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا کا خیر بھی دے اور اللہ ہمیں آخرت کا خیر بھی دے. اور یاد رکھیں, مومن کے پاس مال پسندیدہ ہے, رزق حلال سے ہو تو مومن کے پاس مال پسندیدہ ہے, اس لیے کہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں ہوتا. دین کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتا ہے اور اپنے محتاج بھائی کی مدد کرتا ہے. تو مسلمان کے پاس رزق حلال سے مال ہونا پسندیدہ ہے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو رزق حلال کا نوالہ کھلائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھر کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھولے کہ جنہوں نے اپنے کلام کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی جائز دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اس دین کو دوبارہ زندہ کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر سٹینڈ لینا آسان بنا دے. اللہ ہمارے لیے ان چیلنجز میں سٹیڈفاسٹنس استقامت اختیار کرنے کو آسان بنا دے. اللہ ہمارا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ مضبوط کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.